ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाया वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय क्रमांक 16। भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। श्लोक क्रमांक 18।
कश्चित् गृह आश्रम कर्म चोदन्ति क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदन्ति भरगृहं आरुरुक्षणो लोकम् परगृहं मारुरुक्षमाण लोक। व्यसनाकर्षित मनाः कंटक व्यसनाकर्षित मनाः कंटक सर्करा क्षेत्रं प्रवेशन् इव सिद्धति। क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदन्ति भरगृहं मारुरुक्षाणो लोक। व्यसनाकर्षित मना कंटक सर्करा क्षेत्रं प्रविशन् निवसिदति। क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदन्ति भरगृहं मारुरुक्षमाणो लोक। व्यसनकर्षित मनः कंटक सर्करा क्षेत्रं प्रविशन् निवसिदति। क्वचित्
कभी कभी गृह आश्रम गृहस्थ जीवन कर्म चोदना सकाम कर्म का पालन अति भर गिरेम ऊंची पहाड़ी आरुरुक्षमाण चढ़ने की इच्छा लेकर लोक भौतिक संसार व्यसन लत कर्षित मना आकर्षित मन वाले कंटक शर्करा क्षेत्र कांटी तथा कंटकों से आच्छादित खेत प्रविशान खुसते हुए इव सदृश सिद्धति पश्चाताप करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत संस्कृत की अनुवाद। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्म कांड विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवित संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य है। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इसको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इसकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है जिसे संसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती है। तात्पर्य, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं। भारत देश में यहाँ मान्यता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। आजकल विवाह तय करना अत्यंत कष्ट साध्य हो गया है। इस समय न तो कोई ठीक से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, न ही कोई अपने पुत्र पुत्रियों के विवाहों का व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब गृहस्थों को यह सामाजिक कृत्य करने होते हैं तो वे अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पांव में कांटे चुभ रहे हो अथवा पत्थर कष्ट दे रहे हो, किंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि इसके कष्टों के बावजूद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है, भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक। हित्वात्म पापम गृहमंद कूपम वनम गतोम यद्ध स्वयं आश्रयेत। तथा कथित सुखमय पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंधे कुएं से की गई है। यदि तृणाच्छादित अंधकूप में कोई गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए पहुंचे हुए आत्मज्ञानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की संतुष्टि नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचार्य रह जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव न हो सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना होता है। ऐसा करने पर प्राणी इनका दास बन जाता है, भले ही इन्हें करते रहने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव ही क्यों न हो। गृहस्थ आश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए धनार्जन हेतु अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वह सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों की चुभन जैसे अनुभव करता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसका शीर्षक आप लोगों ने अब तक तो 17 श्लोक में काफी कुछ सुना होगा। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है, यह भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। तो यहां आप देखते हैं कि वन का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया है। तो अभी आप देखते हैं कि दो शब्द है, एक है वन और एक है भवन। तो कोई बता सकता है, चलो भवन तो आप लोग जानते हैं, जहां भगवान का निवास होता है उसको भवन कहा जाता है। तो वन की शैली कोई बता सकता है कि वन क्या होता है? तो चैतन्य महाप्रभु आप देखते हैं, जब वृंदावन आ रहे थे वो भी झारखंड से निकले थे। तो अभी आप लोग जहां निवास करते हैं ये तो वृंदावन है, वृंदावन आप लोग भजन भी गाते हैं ना, दिव्य स्थान। तो वृंदावन को भी वन कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे कि कैसा वन है अभी। हाँ, वन तो उसको बताया जाता है जहां सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं आती, इतना गहना होता है। तो कोई बता सकता है कि वो वन क्या होता है? वन में क्या होता है? वन में क्या होता है? हाँ जी, हाँ, जंगली जानवर जंतु होते हैं, और क्या होता है? हाँ जी, हाँ, झाड़ियां कांटे होते हैं, लेकिन वो तो होता है, वो तो बच्चा भी जानता है। हाँ, लेकिन वन में होता है क्या है? तो इनका आपस में क्या होता रहता है? एक दूसरे को खाने में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं? हाँ हाँ, कॉम्पिटिशन रहता है। क्या चल रहता है? कॉम्पिटिशन, यानी एक दूसरे को मारने में लगे रहते सब। तो इसके अध्याय के प्रारंभ में ही जो है सुखदेव गोस्वामी ने ही बताया था कि किस प्रकार यात्री, आगे मैं बताऊंगा कि यात्री वो वन में प्रवेश क्यों करता है, वन से क्यों गुजरता है, कोई कीमती चीज मिल जाएगी इस कारण वो वन में प्रवेश करता है। तो यहां आज के इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति पहाड़ी, आप में से कितने लोग पहाड़ी चढ़े हैं? चलो बढ़िया है, यानी चप्पल के बिना चप्पल के, तो पता चलेगा कि कंकड़ और जो कांटे होते हैं उसका अनुभव। तो अभी यहां आप देखते हैं कि भौतिक जगत का मतलब है चिंता और भय। तो हितोपदेश में भी उल्लेख आता है, उसमें बताया गया कि चार चीज जो जानवर मनुष्य एक जैसे कर लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समान। तो आज के इसमें हम देखते हैं कि यहां जो बताया गया है कि खास करके गृहस्थ आश्रम उसको किससे प्रभुपाद जी तुलना करते हैं कि एक जंगल में कुआं होता है, कभी कभी जंगल में कुएं सूख जाते हैं तो उसके ऊपर घास आ जाता है और वो यात्री को कभी दिखाई नहीं देता है, तो उसके अंदर कोई गिर भी जाता है वो चिल्लाता, कितना भी चिल्लाता रहे उसको कोई ऊपर उठाने वाला नहीं होता है। तो उसकी तुलना यहां की है। लेकिन आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे कि जब भी एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो कितना कष्ट होता है, एक तो पैर में कांटे चुभते हैं, कंकड़ चुभते हैं। तो एक ऐसी कहानी आती है, एक राजा थे तो उनका नाम था भर्तृहरि। तो बताते हैं भौतिक जगत का भय क्या है। तो वास्तविक में उनके अंदर कैसे वैराग आ गया, तो उसकी एक ऐसी कथा आती है कि एक बार उनके इसमें जब वो दरबार में बैठे थे तो उन्हें किसी ने एक यात्री ने एक बहुत ही अच्छा हार दिया, मोती का हार दिया। तो जैसे वो अपने पत्नी को, अपने रानी को प्रेम करते थे, तो उन्होंने हार अपने रानी को दे दिया। तो लेकिन रानी का मन किसी और के ऊपर था, मंत्री के ऊपर। तो रानी ने वो हार जो है मंत्री को दे दिया। लेकिन मंत्री जो है वहां किसी वेश्या को चाहते थे, तो मंत्री ने वो हार जो है वो वेश्या को दे दिया। तो एक बार क्या हो गया कि वो वेश्या वहां राजा के दरबार में नाच रही थी। तो नाचने के बाद वो वेश्या ने वो हार फिर से राजा को दे दिया। तो राजा देखते रह गया, अरे ये क्या हो गया। तो मिनिस्टर से कहा, अरे थोड़ा ये करो, जांच करो, ये हार कहाँ कहाँ होके आया। तो इस प्रकार आप देखते कि राजा के अंदर एक वैराग्य की भावना आई। तो ऐसे तो पहले उन्होंने प्रेम शतक लिखा था, उसके पश्चात उन्होंने एक ऐसा शतक लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया वैराग्य शतक। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है जिसको हम पहले पढ़ के बताते हैं। भोगे रोग भयम कुले चुति भयम वृत्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्व वस्तु भयान्वितं भृणे निनाम वैराग्यम एव वा भयम। तो यहां जो है वो बता रहे कि भौतिक जगत में एक व्यक्ति को भय बना रहता है। जैसे एक कन्नड़ लैंग्वेज है, उसमें कहा गया है कि शादी करके घर बांध के देखो तो जिंदगी क्या है पता चलेगा। तो कन्नड़ लैंग्वेज में है, तो उसमें कहा जाता है कि घर बांध के जो है शादी करके, हाँ, घर बांध के देखो तो पता चलेगा जिंदगी क्या है। तो बताते हैं कि भोगे रोग भयम। अभी एक व्यक्ति संसार घर प्रवेश क्यों करता है, चलो कुछ लाइसेंस मिल जाता है थोड़ा भोग करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति को जो है भोगे रोग भयम, आजकल आप लोग जानते हैं बहुत प्रकार की बीमारियां, किसी डॉक्टर के पास जाओ बोलते बहुत सारे टेस्ट करो, हाँ भोगे रोग भयम। फिर कुले चुति भयम, तो कुले चुति भयम का मतलब है जैसे हर एक व्यक्ति, भारत, चाइना, बहुत सारे ऐसे देश है, वो पुत्र संतान चाहते हैं। तो शास्त्रों में क्या बताया जाता है कि पुत्र क्या करता है कि पिताजी का तर्पण करता है, तो उससे पू नाम के नर्क से पिताजी को राहत मिलती है। तो इसलिए काफी लोग क्या चाहते हैं कि पुत्र की कामना करते हैं। तो इसलिए कुले चुति भयम, जिसका पुत्र नहीं होता है उसको एक डर रहता है कि मुझे नर्क से कौन उभारेगा। फिर वृत्ते नृपालाद भयम, आप लोग जानते हैं वृत्ते का मतलब है वृत्त मंत्री, FM, फाइनेंस मिनिस्टर। तो सबसे बड़ा रुपया, अभी इसके बारे में ज्यादा डीप में बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि पैसा जो है हमारे हर एक इंद्रिय को वो आनंद देने वाला है, चाहे वो नाक हो, कान हो, आंख हो। लेकिन अगर आप शहद खाते तो सिर्फ बस जीभ में आनंद मिलेगा, लेकिन वही शहद शरीर में लगा दो चींटियां आके खा जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वृत्ते नृपालाद भयम, जिसके पास धन है। आजकल आप देखते हैं कि एक साल पहले नोटबंदी हुआ था, तो आज भारत में हम देखते हैं कि काफी लोग जो है वो कंगाल हो गए। काफी लोगों ने पता नहीं नोट कहां कहां छुपा के रखा था, जमीन में गाड़ के। तो ये नोटबंदी होने के बाद में क्या हो गया, बस वृत्ते यानी सब कंगाल हो गए। वृत्ते नृपालाद भयम। फिर माने दैन्य भयम, तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों का सम्मान किया जाता है। जैसे अमेरिका में 30 साल पहले एक ये थे प्रेसिडेंट निक्सन करके, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, एक बड़ा स्कैंडल हो गया, तो उनको प्रेसिडेंट से नीचे उतारा गया पूरे देश के सामने। तो ऐसे दुनिया में हम देखते हैं कि जैसे भारतीय या कोई देश के, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल मैच, तो लोग क्या करते हैं, सड़े हुए आलू टमाटर या कुछ गंदी चीज फेंक देते अगर वो हार जाते तो। लेकिन जीत के आते तो बस उनको बड़े गाड़ी पर बिठा के उनके हार डाल के क्या क्या करते हैं। तो माने दैन्य भयम, जिस व्यक्ति का मान किया जाता है उसका, अगर उसको अगर लोग कुछ बुरा बोल देते तो बड़ा बुरा लगता है। फिर बले रिपु भयम, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, हाँ अगर वो देखता है अरे मुझसे भी बढ़कर कोई अभी ये है शक्तिशाली है, तो वो भी जो है उसको एक डर रहता है कि यह आदमी मुझे हरा देगा। फिर रूपे जराया भयम, ये तो भय आज इस दुनिया में सबको बना रहता है। जो रूपवान व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, रूपे जराया भयम, बुढ़ापा, बुढ़ापा का डर रहता है। तो नीति शास्त्र में एक उल्लेख आता है, एक बार एक बुढ़िया कुछ देख रही थी, तो एक बच्चे ने पूछा किम पश्यति वृद्धे, उसने पूछा अरे बुढ़िया क्या देख रही हो, तो उसने कहा अरे मूर्ख ना जाना थी, वो कहने लगी तुम नहीं जानते कि मेरी सुंदरता खो गई। क्या खो गई? सुंदरता। तो आजकल आप देखते कि गली गली में ब्यूटी पार्लर, और सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है डिफेंस के बाद में वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरी से लेके पता नहीं क्या क्या सर्जरी सब कुछ करते हैं अपना रूप बनाए रखने के लिए। इसके बाद में आता है शास्त्र वाद भयम। तो आजकल इतना शास्त्र का कोई ये नहीं करता है वाद विवाद, लेकिन एक जमाना था पुराने जमाने में, जैसे केशव कश्मीरी के साथ निमाय पंडित ने वाद विवाद किया था। तो शास्त्र वाद भयम, फिर गुणे खल भयम। गुणे खल भयम का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति परिवार के साथ रहता है बड़ा, उसको भी एक डर रहता है कि एक दिन मुझे परिवार को छोड़ना पड़ेगा। काय कृतांतात भयम, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई प्रकार की जो है वो भय बनी रहती है। और आगे उल्लेख आता है सर्व वस्तु भयान्वितम भूई निणाम, इसका अर्थ है कि इस भौतिक जगत में हर एक को कोई ना कोई प्रकार का एक भय बना रहता है। किसी को मच्छर का डर लगता है, किसी को खटमल का। अभी तो आप लोग जब भी ऑफिस में जाते हैं, कोई अगर ऑफिस में काम करता है तो उसको अपना बॉस का डर रहता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो है वो भय बने रहते हैं। तो अंत में वो ये बताते हैं वैराग्यम एवा वा भय, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति वैरागी है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। जो एक व्यक्ति वैरागी होता है क्योंकि उसको कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं। तो यहां अपरूपा जी बताते हैं कि भौतिक जगत में खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताते हैं कि गृहस्थी जीवन में एक व्यक्ति को कंपटीशन करना पड़ता है। अपने पड़ोसी के पास कार है तो खुद को भी कार, अगर उसका बच्चा कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है चलो अपने बच्चे को भी उसको स्कूल में डालना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो संसार में एक व्यक्ति लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत सारे यानी जो है अनुष्ठान करने होते हैं धार्मिक। तो अभी यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं खास करके प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे शादी करनी हो या जो है बच्चों का संस्कार करना हो, तो वास्तविक में देखा जाए कि आजकल लोग ये बहुत कम करते हैं। आजकल पहले एक जमाना था कि लोग शादियों के लिए दो दो तीन तीन दिन जाते थे, कहीं कहीं एक एक हफ्ता लगता था शादी के लिए, लेकिन बस आज सुबह जाओ दोपहर को वापस, नहीं तो शाम को शादी हो जाती है। तो पहले लोग जो है ढंग से करते थे, कुछ संस्कार होते हैं। तो शास्त्रों में 10 प्रकार के जो है प्रमुख संस्कार बताए हैं, और इन संस्कारों का लाभ जो है वो भी हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भक्ति का प्रचार करते हैं। जो संस्कार किए जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के दुनिया में 99% लोग वो सुखी नहीं है। गृहस्थी जीवन में भी लोग सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है जो संस्कार जो बताए गए हैं जिनको करना ही पड़ता है वो क्योंकि उसका पालन नहीं करते, तो इसके कारण उनको बाद में उसका दुख भुगतना पड़ता है। जैसे समझो अगर एक व्यक्ति खेती करता है तो खेती में जो बीज होता है, बीज यथा बीजम यथा अन्नम, जैसे बीज होगा वैसे उसका फल होगा। तो ये बीज का भी संस्कार करते हैं किसान लोग। तो उसी प्रकार शास्त्र में उल्लेख आता है कि शादी के पश्चात जो एक व्यक्ति को सबसे पहला जो संस्कार करना होता है, एक यानी गर्भाधान का संस्कार उल्लेख आता है। तो ये संस्कारों का जो है लाभ क्या है उसको मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। तो पहला ये उल्लेख आता है संस्कारे गहन यानी ठोस मन व शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, तथा जीवन के चुनौतियों का सामना करने हेतु दृढ़ता अड़िग विश्वास देते हैं। तो आजकल बच्चों को हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि 2.5 साल का होता है तो स्कूल में डालते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले बच्चों को 6 साल के बाद में स्कूल भेजते थे। आजकल साइंटिस्ट लोगों को ये भी पता चलता है, पता चल रहा है कि बच्चों का यानी 6 साल तक माइंड डेवलप नहीं होता है, लेकिन आजकल पता नहीं LKG कहाँ कहाँ डाल के बच्चे को जो है आजकल लोग 1-1 लाख रुपए फीस देते हैं, UKG LKG जो भी है। ऐसा विश्वास है कि रक्त शुद्धि का कार्य करती है तथा शरीर के प्रत्येक अंग को भरपूर प्राणवायु देकर रक्त संचार बढ़ाते हैं। तो संस्कार से ये भी एक लाभ है। फिर संस्कारें शरीर को शक्ति प्रदान करती है तथा नव प्राण स्फूर्ति प्रदान करती है। वे शारीरिक शक्ति ताकत व ऊर्जा लंबे समय तक कार्य करने के लिए बढ़ा सकती है। वे मस्तिष्क की क्षमता में प्राण प्रदान करती है तथा एकाग्रता एवं बुद्धिमत्ता की क्षमता बढ़ाती है। संस्कारें अपनत्व की भावना संस्कृति तथा परिकृष्ट शुद्ध संवेदनशीलता प्रदान करती है। एक शक्तिशाली चरित्र निर्माण हेतु वे मानवीय प्रयोजनों को एक सदृढ़ दिशा देते हैं। संस्कारें दंभ अहंकार स्वार्थपरता क्रोध ईर्ष्या लालच अतिभोगिता आलस्य व्यभिचार लोभ व भय जैसे दोषों का संहार उनको समाप्त कर देती है। वे जीवन पर्यंत नैतिक एवं भौतिक संतुलन प्रदान करती है और अंत में संस्कारें संतुष्ट व सिद्ध जीवन के साथ साथ मृत्यु को साहस के साथ सामना यानी आलिंगन करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है। तो अभी जैसे आज के इसमें ये बताया गया है कि एक जो गृहस्थी होता है तो उसको जो है बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो भी शास्त्रों में बताया गया है हाँ ये ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात व मोक्ष अशुभात। तो हमें जो शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान दिया है ये एक प्रकार का साइंस है। साइंस का मतलब है कि आप एक जो प्रयोग करते हैं उसका कुछ आप ये बताते हैं इससे क्या होता है। तो इस प्रकार ये जो धार्मिक अनुष्ठान है तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के एक व्यक्ति के खास करके सांसारिक जीवन में तो एक व्यक्ति को बहुत सारे चुनौतियों को ये करना पड़ता है, उसको उभरना पड़ता है। तो इस अध्याय में आप देखते हैं कि इस अध्याय के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया था कि कभी कभी वणिक का मतलब है कि जो बनिया अनेक दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने और उन्हें लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। तो वो बताते हैं कि वन का मार्ग है वो संकट से भरा रहता है। वन में ये जानवरों के अलावा डकैत लोग भी होते हैं। डकैत लोग भी वो भी क्या करते हैं कि यात्रियों को पूरा लूट लेते हैं, उनको बांध देते हैं। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि यहाँ कि ये जो सांसारिक जीवन है तो एक जगह ऐसी उपमा आती है कि एक व्यक्ति का जो परिवार है तो उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी तुलना कैसी की है कि ये वन के पशु हैं, वन के पशुओं से तुलना की है। और वन के पशु क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, अपना अधिकार मांगते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक यानी इसमें से एक व्यक्ति कैसे बाहर आ सकता है। वो प्रेम विवर्त से एक वाक्य करते हैं, कृष्ण बहिर्मुख हन भोग वांछा करे झपटिया माया तारे निकटिय धरे। तो इस भौतिक जगत में जब एक व्यक्ति भोग करने की इच्छा करता है तो माया पीछे पीछे खड़ी रहती है, वो माया क्या करती है उसको पकड़ लेती है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं नाना योनी सदा फिरे, जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता है, कदर्य भक्षण करे उसे घृणित वस्तुओं की को खाना पड़ता है, तारे जन्म अध पाते याय, इस प्रकार उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार भौतिक जगत में जो ये अंधकूप में पड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भक्तिनोद ठाकुर भी एक अपने भजन में लिखते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पिए नाना विधव्यथा, यानी भगवान को भूलकर जीव इस भौतिक जगत में आता है तो उस व्यक्ति को बहुत प्रकार के जो है कष्ट झेलने पड़ते हैं इस भौतिक जगत में। तो इस ये आज का जो श्लोक आता है तो इसी प्रकार का एक जो श्लोक है 13वें अध्याय में था, पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये 13वें अध्याय में 8वां नंबर जो श्लोक था तो उसमें यही उपमा एक बार पहले दी गई थी, तो उसको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है किंतु अपर्याप्त पद त्राण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। तो यही जो है उपमा पिछले अध्याय में दी गई थी। तो महाभारत में ऐसा ही उल्लेख आता है, एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति जंगल गए थे। अभी यहां आप जो देख रहे कि जंगल का उपमा दिया है गृहस्थ परिवार के लिए, तो एक बार एक व्यक्ति जंगल भ्रमण करने गए थे तो उन्होंने जंगल के बीच में एक बहुत ही सुंदर घर देखा और वो इतना आकर्षक घर था, उसका मन किया चलो इतने जंगल में इस घर में कौन रहता है, चलो जाके देखते। तो वो व्यक्ति जैसे चला गया वहां तो कोई सिपाही कोई गार्ड कुछ नहीं था, घर खुला था, अंदर जाके सब जगह जांच कर रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां एक टेबल था तो टेबल के ऊपर बहुत सारे व्यंजन बना के रखे थे गरम गरम। तो देखा अरे कोई है नहीं, तो उसने क्या किया भर पेट खा लिया। तो भौतिक जगत में क्या है कि एक जीवात्मा का ये हालत है, तो जैसे भरपूर भोजन खा लिया तो फिर जैसे बाहर निकला तो थोड़े समय के पश्चात उसको एक शेर की आवाज सुनाई दी। तो इतना डर गया तो देखा पीछे सचमुच एक शेर पीछा कर रहा है, तो इस प्रकार भागना आरंभ किया और बस अपनी पूरी ताकत लगा के भाग रहा था। और भागते भागते जैसे आज के इसमें लिखा है एक कुएं में गिरने वाला ही था तो वहां एक पेड़ था, वो पेड़ की टहनी को पकड़ लिया तो क्या हो गया कि कुएं के अंदर लटक रहा था। तो नीचे क्या देखा, बहुत बड़ा सांप था और वो मुंह खोल के देख रहा था कभी नीचे गिरेगा, अजगर सांप था। तो शेर आके ऊपर खड़ा हो गया और उसी पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी के एक छत्ता था और वहां जो है मधु का एक बड़ा घोंसला था और उसमें से थोड़ा कुछ मधु गिर रहा था उसके एक एक बूंद में उसके नाक के ऊपर। तो हालांकि ये लटका था तो बिल्कुल अपना जीवा निकाल के उसको चाटने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार वहां लटका हुआ था, कुछ समय के बाद में वो जो टहनी थी दो चूहे आए, एक सफेद था एक काला था, तो वो टहनी को एक साइड से खरोचने लग गए। अब क्या होगा, थोड़े समय के पश्चात बस उसको नीचे गिरना ही है। तो इस कहानी का उपमा यह है कि ये भौतिक संसार क्या है, एक बड़ा विशाल वन है और इसमें जो जीवात्मा है वो भटका हुआ है। और ये शेर क्या है, शेर क्या है, ये हमारा मृत्यु है, काल है। और नीचे जो है सांप है वो मृत्यु है और जो मधुमक्खी का जो उसमें से जो मधु गिर रहा है ये क्या है कि भोग और त्याग। और कभी कभी ये मटकियां भी उसको काट रही थी। तो भौतिक जगत में हमें आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक ये तीन क्लेशों से गुजरना होता है। और ये दो चूहे सफेद और काला चूहा वो दिन और रात उसका प्रतीक है। आयु रहित हरती वय पुमसाम उदयन अस्तन चयन असो, जैसे दिन होता है रात आती है तो हमारा जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। तो ये इसमें जो है उपमा जो है वो महाभारत में दी है। तो प्रूपा जी बताते हैं यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन भी रहता है तो भी परिवार में उससे कोई प्रसन्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना पड़ता है। पंचशोर्धम वनम व्रजेत, मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर वृंदावन जंगल में चला जाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें तात्पर्य में, एक व्यक्ति को वृंदावन के जंगल में जाना चाहिए। तत्साधु मन्ने, तो प्रहलाद महाराज का श्लोक उसमें बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जंगल जंगल घूमते कोई हित नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अथ कृष्ण भावनामृत संघ एक कृष्ण बलराम का मंदिर बना रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण में शांति पूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं। तो ऐसे भी और एक पुराण में कथा आती है कि किस प्रकार लोग गृहस्थ जीवन में एक बंधन में रहते हैं और किस प्रकार समय बीत जाता है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे एक कथा और एक कथा की उपमा आती है एक पुराण में। एक बार एक लाश नदी से बह रही थी। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि लाश कभी कभी वो क्या करते थे, नदी में बहा देते थे। तो एक लाश जो है वो मुर्दा नदी में बह के जा रहा था। एक कौवा उसमें चोंच मार मार कर वो मांस खा रहा था, लेकिन वो मांस खाने में इतना व्यस्त था कि कभी वो ऊपर अगल बगल में भी नहीं देख रहा था। तो इस प्रकार वो लाश बहती बहती है वो समंदर में प्रवेश कर गई और काफी समंदर के अंदर चली गई, काफी अंदर। तो क्या हो गया कि कुछ समय के पश्चात समंदर के जो जलचर है वो उस लाश को खाने लग गए, नीचे खींचने लग गए। तो तब कौवा होश में आ गया। अरे, तो उसने ऊपर देखा तो ऊपर तो कंप्लीट आसमान दिख रहा है, अगल बगल में पूरा पानी पानी है और एक कौवा जो है वो ज्यादा उड़ान भर नहीं सकता। एक कौवा है ज्यादा उड़ान भर नहीं सकता है, हंस जैसे। तो इस प्रकार आप देखते कि वो कौवा जो है उसकी वहीं जो है डूबकर मृत्यु हो गई। तो भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज का उल्लेख करते हैं कि एक व्यक्ति को, यहां प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहुंचते हुए आत्मज्ञानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की संस्तुति नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचार्य आश्रम संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचार्य रह जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कांटों का अनुभव न हो सके। तो प्रभुपाद जी आज के इसमें ये बता रहे हैं, अगर किसी को अगर हो सके तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि हाँ इस आश्रम में बहुत सारे ये हैं दुविधाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, तो इन सब में खास करके कृष्ण भगवान के भक्तों का ही उल्लेख आता है और उनके गृहस्थ आश्रम का ही उल्लेख आता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी अन्य जगह भी लिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम का अगर एक व्यक्ति सही ढंग से पालन करता है तो उस गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे भक्तिनोद ठाकुर एक इसमें भजन में लिखते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। वो बताते हैं कि जिस दिन मैं अपने घर में भजन देखता हूँ, मेरे घर के परिवार के लोग मिलकर भजन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा भी घर वो गोलोक वृंदावन जैसे है। तो वास्तविक में देखा जाए कि इस भौतिक जगत में ये जो है ये चक्र जो है वो चलता रहता है। तो भागवत में आप जैसे देखते हैं कि नारद मुनि का भी एक बहुत अच्छा उल्लेख आता है कि नारद मुनि तो सब जगह चाहते कि हर एक व्यक्ति अच्छी तरह भक्ति में लग जाए। तो भागवतम के चौथे स्कंद में आप देखते हैं कि नारद मुनि और दक्ष का एक संवाद आता है, काफी बड़ा ये है, मैंने काफी अध्याय में इसकी कहानी आती है, दक्ष की कथा। तो ऐसे बताया था कि दक्ष जब भी उन्होंने अपने बच्चों को प्रकट किया था तो पहले बैच में उन्होंने 10,000 बच्चों को प्रकट किया था और उन्होंने उनसे कहा था कि आप जाके क्या करो, पहले तपस्या करो, उसके पश्चात आपको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है। तो नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो जब ये नारद मुनि ने देखा अरे बहुत बड़ा बैच है, 10,000 लोग हैं, तो उनको नारद मुनि ने पूरा भक्ति सूत्र बता दिया, नारद भक्ति सूत्र। तो जब ही उन्होंने सुना तो उनको लगा अरे वाह अच्छा है, तो वो लौट के घर आए नहीं। तो दक्ष बड़े क्रोधित हो गए, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अब की बार दक्ष ने क्या किया, 1000 बच्चों को प्रकट किया। तो अब की बार जब ही उन बच्चों को उन्होंने फिर से भेजा वन में, तो नारद मुनि फिर उन बच्चों के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो आपके भाई सब लोग आनंद पूर्वक वहां जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप लोग क्यों ये मगजमारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी उनके साथ ज्वाइन करो, महाजन एनग तपंत। तो जब ही उन्होंने सुना अरे वाह इतना आनंद पूर्वक जीवन है, चलो ठीक है हम भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो अब की बार तो जो है दक्ष वो इतने क्रुद्ध हो गए, तो बहुत सारी बुरी गालियां जो है वो नारद मुनि को बकने लग गए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग बहुत सारा परिश्रम करते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति इतना सारा परिश्रम करके अपना घर संसार बनाता है, लेकिन उसको वो संसार छोड़ना पड़ता है। अगर भागवतम के पहले स्कंद में आप देखते हैं धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र ने इतना पूरा सब कुछ कार्य किया था, घृणित कार्य पांडवों को मारने का, उसके पुत्र भी मर गए, फिर भी वो अपना जैसे डिफेंस के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो अपना राज वेश डाल के बैठता था, उसको लगता था कि अभी मैं राजा हूं, हालांकि युधिष्ठिर राज कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक मोह में चला जाता है, लेकिन भागवतम में बहुत सारे आदर्श जो है गृहस्थों का उल्लेख आता है, जिसमें हम देखते हैं ये जो है जैसे राजा, इनके बहुत सारे राजा है, युधिष्ठिर महाराज से लेके जो है प्रहलाद महाराज से लेके ध्रुव महाराज, इनकी बहुत अच्छी कथाएं हैं जिन्होंने आदर्श जीवन गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी ये थे पार्षद, अद्वैत आचार्य, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे ये हैं कहानियां हैं जिनके उल्लेख भी आते हैं। जैसे ऋषभदेव ने भी अपने पुत्रों को जब वो ज्ञान दे रहे थे, तो तभी उन्होंने उनके पुत्रों से ही बताया था कि एक व्यक्ति उसको गृहस्थ आश्रम ये करना है, तो उन्होंने क्या कहा था, माता न सश्चात पिता न सश्चात जैनी न सश्चात दैवन म सश्चात न यह मोचयत समपेतु मृत्युम। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारे ऊपर जो निर्भर है अगर उनको हम मृत्यु से उभार नहीं सकते, तो हमें इस आश्रम का आश्रम में क्या करना नहीं चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए, न तो माता पिता देवता बनने का किसी को अधिकार है। तो इस भौतिक जगत में जैसे यहाँ ये बताया गया है कि बहुत सारे अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे जो है उदाहरण सुने होंगे, तो यहाँ जो ये बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम जो है वो इस प्रकार है कि जैसे एक व्यक्ति कोई एक बड़ी पहाड़ी चढ़ रहा है, और पहाड़ी चढ़ते समय उस व्यक्ति को बहुत सारे कंकड़ और कांटे जो है वो चुभते हैं, और इसका उसको जो है बहुत जो है उसका परेशानी झेलनी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में 99% 99% लोग जो है जो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं वो क्या है, दुखी रहते हैं, उनको कभी ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता है। तो मुझे याद है मैं कुछ साल पहले नोएडा गया था, तो एक माता जी है वो कनाडा में रहती है, कोई एक बैंक में सर्विस करती है, तो उनके पिताजी वहाँ नोएडा में रहते कोई सेक्टर में। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी काफ़ी वृद्ध है, 80 साल के हैं, तो प्रभु जी आप जाके मेरे पिताजी को भगवद गीता दे दो, एक कुछ सत्संग करो हमारे घर में। तो इस प्रकार उसने अपने घर के उनके जो कॉलोनी के लोग थे उनको प्रोग्राम का आयोजित किया था। तो मैं गया था प्रोग्राम करने के लिए एक संडे, तो जैसे उस घर में मैं प्रवेश कर गया तो बस धीरे धीरे करके सब लोग आए। तो प्रोग्राम के पश्चात मैं देख रहा था जो व्यक्ति थे जिनको उनसे मैंने कहा बस आपका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, मैंने पूछा, वो लगभग 80 साल के वृद्ध थे। तो कह रहे थे कि देखो मेरी अभी 80 साल की उम्र हो गई, मैंने जीवन में एक दिन भी सच्चा सुख जो है उसका अनुभव नहीं किया, तो वो मुझे बता रहा था। तो ऐसे बहुत खास करके लोग जो भक्ति में नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी का एक उल्लेख आता है, प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे में एक किसी के एक किसी बनिया के घर या किसी व्यापारी के घर गए थे एक प्रोग्राम करने के लिए. तो बहुत बड़ा परिवार था, एक बहुत बड़ा घर था और प्रभुपाद जी के साथ लगभग उनके 10-12 शिष्य थे. तो जैसे प्रभुपाद जी उनके घर गए उनके अपने शिष्यों के साथ, सारा परिवार आके बैठ गया सिर्फ 2 मिनट के लिए और प्रभुपाद जी को प्रणाम करके सब लोग एक एक करके अंदर चले गए. एक समय ऐसे हुआ कि सिर्फ प्रभुपाद जी और उनके शिष्य थे. तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कुछ एक ऐसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये है पारिवारिक जीवन. हाँ, ये पारिवारिक जीवन है ना, एक व्यक्ति ऐसे करता है लेकिन इनको किसी को आध्यात्म में रुचि नहीं है. क्या नहीं है? आध्यात्म में रुचि नहीं है. हाँ, एक व्यक्ति ये कितना भी बड़ा संसार बनाए, अभी हाल ही के जगत में, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, बॉम्बे में कोई बड़े एक कोई व्यापारी, धनी व्यापारी, हाँ उनका तो बहुत सारा अखबार में आता रहता है कि उन्होंने अपने बहू के लिए 6.5 करोड़ की कार लाई, ये किया वो किया पार्टी. तो भौतिक जगत में लोग जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को शादी, अपने बच्चों की शादी करनी हो तो बहुत करोड़ों में लोग खर्चा करते हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है बिना मतलब का वो जो है ऐसे इसमें अलग अलग शो, अपना शो दिखाने में सारा धन लोगों का चला जाता है. तो आज के इसमें जो है सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे कि किस प्रकार एक व्यक्ति की उस भौतिक जगत में एक ग्रस्त संसार है वो कैसा है कि एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने के समान है. और वो पहाड़ी कैसी है जिसमें बहुत सारे कंकड़ हैं और कांटे हैं और उस व्यक्ति को चुभते रहते हैं. तो इसकी यहाँ उपमा दी है. तो हरे कृष्णा. किसी को कोई आज के क्लास के ऊपर टीका है या प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं. हरे कृष्णा. किसी को ये प्रश्न है, टीका है? नहीं. ओके. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्लोक रूपात की जाए.